3 कामायनी में भाषा संबंधी भूलों को लेकर बड़े बड़े लेख प्रकाशित हुए हैं और बहुत बार समीक्षक प्रसाद की भाषा विषयक लापरवाही की विस्तार में चर्चा करते हैं। इस प्रसंग में स्वभावतः यह जिज्ञासा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन भूलों और ऐसी लापरवाही के बावजूद प्रसाद की रचना प्रक्रिया और उनकी शीर्षस्थ कृति कामायनी इन सारे स्तरों का अतिक्रमण करके रचनात्मक तथा वैचारिक संदर्भों में इतनी संगत और महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस संदर्भ में लांजाइनस की उक्ति को ठीक ही स्मरण किया है, महान प्रतिभा निर्दोषता से बहुत दूर होती है। कामायनी को लेकर यह बात एकदम सटीक बैठती है, पर उसके दोषों की चर्चा करना आसान है कठिन है उन दोषों के साथ और बावजूद इस काव्य कृति के वैशिष्ट की व्याख्या करना। इस बात की चर्चा पहले भी की गई है कि काव्य रचना में सामान्यतः भाषा के दो स्तर परिलक्षित किए जा सकते हैं, सामान्य वर्णन की भाषा और बिंबों की भाषा। कविता के रचना विधान में बहुत बार बिंबात्मक भाषा अपने आंतरिक संस्पर्श से वर्णन की सामान्य भाषा को भी आलोकित करती चलती है और यह तो स्पष्ट है कि कविता का अधिकांश वर्णन की सामान्य भाषा में होता है, जबकि कविता का पूरा रचना संगठन कुछ विशिष्ट प्रयोगों से समग्रतः दीप्त हो उठता है। उदाहरण के लिए प्रसाद का एक प्रसिद्ध और संक्षिप्त गीत लिया जा सकता है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खक्कुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। इस गीत के रचना संगठन का यदि हम विश्लेषण करें तो जो बात आसानी से समझ में आ जाती है वह कविता का नाद सौंदर्य है, पर यह भी स्पष्ट है कि अकेले नाद सौंदर्य का कविता की रचना प्रक्रिया में निर्णायक महत्व नहीं है। गीत के पूर्वार्ध में प्रातः काल का जो रूप अंकित हुआ है वह प्रधानतः वर्णनात्मक है। इन पंक्तियों में यद्यपि दो बिंब भी आते हैं, उषा नागरी और मध मुकुल नवल रस गागरी, पर ये दोनों बिंब इतने बहुप्रयुक्त अप्रस्तुत विधान पर आधारित हैं, उषा की युति और कली की रसगागर, कि इन्हें काव्य बिंब संकोच के साथ ही कहा जा सकता है। खग कुल और किसलय वाली पंक्तियां तो सीधे ही इतिवृत्त प्रधान और वर्णनात्मक हैं, अतः यहाँ तक कविता में नाद सौंदर्य के अतिरिक्त कोई शक्ति विकसित नहीं होती, पर अंतिम चार पंक्तियाँ कविता की सारी भंगिमा को बदल देती हैं। यहाँ कवि ने दो सर्वथा नए और उत्कृष्ट बिंब विकसित किए हैं, अलकों में मलयज बंद किए और आँखों में भरे विहाग, री जान बुझ कर जोड़ दिया है क्योंकि उसका विशेष प्रभाव नाद सौंदर्य की दृष्टि से है। दोनों बिंब मलयज विहाग एक शब्दीय हैं और यदि उनका वैसा सूक्ष्म रूप न होता तो उन्हें बिंब कहना कठिन था, पर अपने सूक्ष्म और अमूर्त स्तर पर वे अर्थ की गहरी छायाएं विकसित करते हैं। मलयज से कोमलता, सुगंध, आकर्षण, सलज्ज भाव, मादकता और इनसे मिलती जुलती न जाने कितनी व्यंजनाएं संभव होती हैं। यूं जैसा कहा गया, एक शब्द से बिंब रचना प्रायः संभाव्य नहीं होती, हाँ प्रतीक का रूप बनता है, पर मलयज के सूक्ष्म अमूर्त रूप ने एक अकेले शब्द से ही एक समूचे बिंब का निर्माण होने दिया है। दूसरा बिंब आता है विहाग का, जो वैसा ही सुकुमार, सूक्ष्म और अमूर्त है जैसा कि मलयज का बिंब, और इसीलिए उतना व्यापक और संश्रेष्ठ भी है। रात्रिकालीन राग विहाग देर रात तक जागरण, खुमार, अलस भाव और संगीतात्मकता की विविध छायाओं को व्यंजित करता है और दोनों बिंबों की भाव प्रक्रिया परस्पर संबद्ध है। इसी स्तर पर आकर कविता का आरंभिक वर्णन अनुभव में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रसिद्ध गीत में कविता बनती है अंत के इन दो बिंबों के सहारे, जो क्रमशः पूरे गीत में परिव्याप्त हो जाती है। पूर्व प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से इन बिंबों के अभाव में पूरी कविता का नाद सौंदर्य बेकार होता है और यह गीत प्रातः काल का इतिवृत्तात्मक वर्णन मात्र होकर रह जाता है। अपने अमूर्त और सूक्ष्म बिंब विधान में प्रसाद समूची आधुनिक कविता में बेजोड़ हैं। विशेषतः प्रणय संदर्भों से अनुप्रेरित कवि की इस अनुभव प्रक्रिया को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भली भांति पहचाना था, पर आलोचक ने नैतिक दृष्टि के दबाव में इसे समर्थन नहीं दिया, यद्यपि कुछ आशंसा जरूर दी। प्रसाद की रचना प्रक्रिया के इस विशिष्ट पक्ष को लेकर शुक्ल जी की समीक्षा में आस्वादन, आशंसा और खीज की मन स्थित मिली जुली दिखाई देती है, जिसे व्यक्त करने के लिए समीक्षक ने स्वयं प्रसाद के जोड़ का एक बढ़िया और वैसा ही सूक्ष्म अमूर्त बिंब गढ़ा है मधुचर्या, जिसके सहारे उन्होंने छायावाद के एक विशिष्ट पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए है। अतः इनकी प्रसाद की रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्या के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। हिंदी साहित्य का इतिहास नई धारा। इस एक समीक्षा बिंब के सहारे शुक्ल जी ने प्रसाद के काव्य वैशिष्ट को समझना चाहा है और जिससे हम स्वयं समीक्षक का कवि के प्रति आकर्षण विकर्षण एविवेलेंस भाव समझ सकते हैं। शुक्ल जी के सूक्ष्म सौंदर्य ग्रहण और वैसे ही सूक्ष्म नैतिक अनुशासन के संश्लेष को विवेचित कर सकते हैं। प्रसाद के उपर्युक्त गीत के इस विश्लेषण से हम एक ही कविता में सामान्य वर्णन की भाषा और बिंबों की पारस्परिक स्थिति और उनकी अंतर प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने की स्थिति में हो सकते हैं। अब इस अंतर प्रक्रिया के विविध रूपों को कामायनी में देखना कवि की रचना प्रक्रिया को उसके व्यापक और विराट रूप में समझना होगा। प्रसाद काव्य में सामान्य वर्णन की भाषा प्रायः उपेक्षित सी लगती है। चित्राधार से लेकर कामायनी तक उसमें व्याकरण, वाक्य विन्यास, लय सभी को लेकर असावधानी देखी जा सकती है। यह भी स्मरणीय है कि प्रसाद की कला क्रमिक विकास की कला है। वे ऐसे कलाकार नहीं जो अपनी आरंभिक रचनाओं से ही पूरे साहित्य को आंदोलित कर देता है, पर जहां रचना के अन्य सभी क्षेत्रों में प्रसाद का व्यक्तित्व उत्तरोत्तर निखरता गया, वहां वर्णन की भाषा आरंभ से अंत तक एक जैसी शिथिल और उदासीन दिखाई देती है। दूसरी ओर कवि की बिंब भाषा है, जो अपने विधान में अप्रतिम है और जो कवि के रचना व्यक्तित्व में बराबर अधिक परिष्कृत, सूक्ष्म और अर्थवान होती गई है। प्रसाद की वर्णन भाषा यदि सबसे शिथिल है तो उनकी बिंब भाषा निश्चय ही सबसे अधिक विकसित है। प्रसाद की काव्य भाषा के गठन में यह अंतर विरोध जितना रोचक और अनुपम है, व्याख्या के स्तर पर उतना ही कठिन भी है, पर यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि काव्य भाषा के इस अंतर विरोध का संबंध प्रसाद की अपनी कविता संबंधी दृष्टि से है। साहित्य चिंतन के एक प्रसंग में प्रसाद ने लिखा है, दोनों कवियों तुलसीदास सूरदास के शब्द विन्यास कौशल पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि जहां आत्मानुभूत की प्रधानता है, वहीं अभिव्यक्ति अपने क्षेत्र में पूर्ण हो सकी है, वहीं कौशल या विशिष्ट पद रचना युक्त काव्य शरीर सुंदर हो सका है। इसीलिए अभिव्यक्ति सहृदयों के लिए अपनी वैसी व्यापक सत्ता नहीं रखती जितनी की अनुभूत काव्य और कला तथा अन्य निबंध पृष्ठ 44। अनुभूति को यूं एकांत महत्व देते देते प्रसाद शब्द विन्यास कौशल की उपेक्षा कर देते हैं। अपनी इस मान्यता को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कला की आत्मानुभूत के साथ विशिष्ट भिन्न सत्ता नहीं, अनुभूत के लिए शब्द विन्यास कौशल तथा छंद आदि भी अत्यंत आवश्यक नहीं। वही पृष्ठ 43। पूरी काव्य कृति में अनुभूत की तीव्रता एक जैसी रह सके यह स्वभावतः संभव नहीं है। जहाँ कवि ने बिंब रचे हैं वहाँ उसका अनुभव भी अनुभव अपनी समग्रता में निखर आया है, और जहाँ कवि के ही अनुसार अनुभूति क्षीण है वहाँ शब्द विन्यास कौशल भी उपेक्षित है। इसमें संदेह नहीं कि शिथिल प्रसंग कामायनी में थोड़े नहीं हैं। प्रायः हर सर्ग में इस तरह की कुछ पंक्तियाँ मिल जाती हैं। इन प्रसंगों की एक फेहरिस्त बन सकती है, पर उससे यहाँ हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि व्याकरण और वाक्य विन्यास की भूलों का अतिक्रमण रचना कैसे करती है। जैसा कहा गया है, काव्य भाषा के दो स्तर हैं, बिंब भाषा जो रचना में अर्थ और इसीलिए अनुभव को निरंतर विकसनशील बनाए रखती है, और सामान्य वर्णन भाषा जिसकी प्रकृति वृत्तात्मक और सूचनात्मक होती है। काव्य की रचना प्रक्रिया में प्रधानता स्पष्ट ही बिंब भाषा की ही की होती है। फिर प्रसाद की काव्य भाषा में तो बिंब गठन इतना महत्वशाली है कि वर्णन की भाषा का अस्तित्व ही जैसे क्षीण हो जाता है। सामान्यतः जो व्याकरणिक भूलें हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं, वे रचना वैभव के विशिष्ट संदर्भों में मिलकर अमहत्वपूर्ण हो जाती हैं। रचना के प्राथमिक स्तर पर को उच्च स्तर आप से आप अतिक्रमित कर देता है। यही कारण है कि वे भूलें अपनी जगह हैं, और यदि उन्हें अलग से उद्धृत किया जाए तो वे लगभग अक्षम्यशील भी लगती हैं, पर संपूर्ण रचना के गठन में उनका अस्तित्व स्वतः विलीन हो जाता है। इस दृश्य से कामायनी के दो आरंभिक वर्णनात्मक सर्गों चिंता तथा आशा या बीच के संवाद प्रधान सर्ग कर्म ईर्ष्या और निर्वेद तथा इसी तरह अंत के दो दार्शनिक विवेचन परक सर्ग रहस्य और आनंद में व्याकरणिक भूलें अपेक्षा अधिक हैं। इनकी तुलना में श्रद्धा काम वासना लज्जा तथा इड़ा सर्गों में भाषा समग्रतः स्वच्छ और निर्मल है। जहाँ बिंबों का वैभव समूचे आधुनिक काव्य में अतुलनीय है। सम्मेलन पत्रिका भाग 55 संख्या 1-2 में एक निबंध प्रकाशित हुआ है, कामायनी के वे स्थल जहाँ भावुकता में भाषा पथ भूल बैठी है। लेख के भावुक और आलंकारिक शीर्षक को थोड़ा भुला कर यदि हम इसकी सामग्री का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि विविध सर्गों के उल्लेख सहित उसमें कुल 32 भूलों का संदर्भ दिया गया है। इन भूलों का सर्गों की दृष्टि से विभाजन किया जाए तो स्थिति इस प्रकार है, चिंता 8, कर्म 5, आशा 4, निर्वेद 4, श्रद्धा 4, लज्जा 4, ईर्ष्या 1, ईड़ा 1, आनंद 1, कुल संख्या 32। इस तरह सामान्य वर्णन संवाद विवेचन प्रधान सर्गों में भूलों की संख्या 23 है, जबकि श्रद्धा लज्जा और ईड़ा में कुल मिलाकर 9 भूलें संकेतित हैं। अकचक उठाए गए इस निबंध में निर्दिष्ट भूलों के विश्लेषण से कामायनी के संदर्भ में बिंब भाषा और वर्णन भाषा की पारस्परिक स्थिति संबंधी उपर्युक्त मान्यता समर्थित होती है। भूलों के मार्जन के लिए हमारा कोई प्रयत्न नहीं है, वे न होती इसकी कामना भी अब निरर्थक है। संपूर्ण रचना प्रक्रिया में वे कैसे अप्रासंगिक हो जाती हैं, यही दृष्टव्य है। बिंब विधान को जगह जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संश्लिष्ट कहा है। इसका एक अच्छा प्रमाण प्रसाद का काव्य प्रस्तुत करता है। व्याकरणिक भूलें जो सामान्य स्थलों पर मिलती हैं, उनके बिंब प्रसंगों में प्रायः नहीं के बराबर हैं। इससे समझा जा सकता है कि बिंब और उसका अनुभव समग्रतः विकसित होता है। यदि उसमें यदि भूल होगी तो पूरे संश्लेष में न कि अलग अलग टुकड़ों में। अनुभव को उसकी संपूर्णता और गति में पकड़ने के लिए बिंब रचना साक्षात्कार का एक दक्ष उपाय है। साधारण शब्द अनुभव को जड़ और निशेष कर देता है, पर बिंब अनुभव को उसकी पूरी जटिलता और सूक्ष्मता में अंकित करता है। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन के प्रसंग में मुस्कान का बिंब परक अंकन प्रसिद्ध है, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। यदि श्रद्धा की मुस्कान की तुलना केवल किरण से की जाती तो एक प्रतीक बनता मुस्कान किरण, और वह मुस्कान के अनुभव को ऐसे समग्र और सूक्ष्म रूप में व्यंजित न कर पाता। पर यहाँ एक पूरा बिंब रचा गया है, नए सूर्य की दूर से आती हुई किरण जो कुछ थक गई है और एक रक्तिम कोमल किसलय को पाकर क्षण भर के लिए ही, क्योंकि उसे दूर जाना है, विश्राम की मुद्रा में अलस भाव से लेटी हुई है। यह पूरा बिंब या भाव चित्र कई तत्वों से निर्मित हुआ है और उनका आपसी संबंध और टकराहट मुस्कान के रूप को अधिकाधिक गहरे और सूक्ष्म स्तर पर विकसित करते हैं, जहां उसकी ताजगी, सूक्ष्मता, अलस भाव और सौंदर्य सब मिलकर एक संश्लेष बन जाते हैं। मुस्कान जितने सूक्ष्म है उतने ही कलापूर्ण और भावात्मक है। कवि ने अनुभव के इसी वैशिष्ट्य को अंकित करना चाहा है और बिंब के सहारे अंकित करते करते न केवल उसे अभिव्यक्त किया है, वरन मानो स्वयं भी उसे और अच्छी तरह समझा है। भाषा इस स्तर पर आकर अभिव्यक्ति ही नहीं, अभिव्यक्ति और अनुभव दोनों एक साथ हो जाती है। प्रसाद की बिंब प्रक्रिया का वैशिष्ट्य कई रूपों में देखा जा सकता है। रचना के स्तर पर सबसे अधिक चिंता कवि को इस बात की है कि उसके बिंब अनुभव के सूक्ष्म और जटिल तराशों को भली भांति रूपायित कर सकें। इसके लिए उसने मानवीय सौंदर्य के रीतिकाल और फिर द्विवेदी युग में प्रचलित स्थूल अप्रस्तुत विधान को निरस्त करके बिंब को नए सूक्ष्म स्तर पर विकसित किया है। स्थूल पदार्थ बाहरी और स्थिर सादृश्य को ही अधिकतर प्रस्तुत करते हैं, जबकि सूक्ष्म स्तरों से लिए गए बिंब प्रभाव और अनुभव प्रक्रिया को व्यंजित करते हैं। प्रसाद के प्रसिद्ध बिंबों की बनावट में इंद्रजाल, चांदनी, सौरभ, मलयज, किसलय पर अलसाती किरण, शून्य, ज्योत्सना, निर्झर, सिंधु के हिलकोर, दक्षिण का समीर विलास जैसे अपेक्षा अमूर्त तत्वों का प्रयोग अधिक हुआ है। जहां बिंब विधान के पारंपरिक तत्व को लिया भी गया है, वहां उसे सर्वथा नया संदर्भ देने का प्रयत्न कवि ने किया है। श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन के प्रसंग में शरीर के अधखुले अंग को रूपायित करने के लिए कवि ने फूल का बिंब लिया है, पर यह फूल साधारण नहीं है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बिजली का फूल कितना सूक्ष्म होगा, उसमें कितनी तड़प और चमक होगी, इसका अनुभव यह बिंब भली भांत संप्रेषित और विकसित करता है। ऐसा ही एक अन्य प्रसंग तब आता है जब काम अपनी पुत्री का सौंदर्य वर्णन मन की अंतःचेतना में करता है। रंगों ने जिनसे खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली। यहाँ भी बिंब का आधारभूत तत्व फूल है, पर रंगों ने जिनसे खेला हो कहकर कवि ने फूलों की आकृति को पीछे करके रंग वैभव और उसके उल्लास को सूक्ष्म स्तर पर संप्रेषित किया है। ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ कवि अपेक्षा स्थूल उपकरण को लेकर भी उसके सूक्ष्म रूप और अनुभव को ही अभिव्यक्ति देता है। छायावादी काव्य विधान का विश्लेषण करते हुए प्रसाद ने अपने छायावाद विषयक निबंध के अंत में मोती के पानी और उसकी आभा का जो उल्लेख किया है उसका वास्तविक रूप इन बिंब विधानों में समझा जा सकता है।